दिन भर 7 नवंबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में दोनों प्रतिद्वंदियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी।
I want to be the president for all Americans, those who vote for me and those who do not vote for me, because we have to heal this country and that's going to take।
चीन ने हांगकांग की राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए चुने हुए दो प्रतिनिधियों के कार्यभार संभालने पर रोक लगाई। होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। मंगलवार को होने वाले अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया है कि चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के पक्ष में धांधली की जा रही है। यह दावा उन्होंने FBI के उस बयान के बाद किया जिसमें कहा गया है कि हिलेरी के ईमेल्स के नए बैच में अपराध का कोई सबूत नहीं मिला है। ट्रंप ने मिशिगन में एक रैली में कहा कि FBI 8 दिनों में 6,50,000 ईमेल्स की समीक्षा नहीं कर सकता। मतदान के लिए मंगलवार का दिन निश्चित है और ऐसे में FBI का ये ऐलान आखिरी मौके पर डेमोक्रेट्स को बढ़त दिलाता है। वहीं हिलेरी क्लिंटन की कैंपेन टीम ने कहा है कि वो खुश हैं कि ये मामला सुलझ गया। भारत की यात्रा पर आई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने ऐलान किया है कि ब्रिटेन में तय समय के बाद अवैध तौर पर रह रहे भारतीय वापस लौटें, तभी ब्रिटेन भारतीयों को वीजा देने में लचीला रुख अपनाएगा। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के भारत के साथ अहम व्यापारिक और कारोबारी समझौते होने हैं। टेरेसा मे ने कहा कि यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन दुनिया में निवेश और व्यापार के लिए आकर्षक देश बनना चाहता है। टेरेसा मे के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका देश ब्रिटेन के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है।
वी हैव ऑल्सो एग्रीड टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड। वी बिलीव दैट
हम व्यापार के लिए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना को लेकर सहमत हैं। हम मानते हैं कि इस तरह का समूह न सिर्फ वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान देगा बल्कि सेवाओं के विस्तार और कुशल पेशेवर लोगों की व्यापारिक गतिशीलता को भी बढ़ाएगा। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मोरक्को में 20,000 लोग वैश्विक जलवायु वार्ता के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये सभी पिछले साल पेरिस जलवायु समझौते के निर्णय पर न पहुंच पाने के कारण जो विवरण छूट गए थे उन्हें भरने के इरादे से जुटे हैं। शुरुआती कार्यवाही में अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव हावी रहेगा जिसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो ये डील रद्द कर देंगे। ट्रंप ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन एक धोखा है और व्यवसाय के लिए बुरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक सर्वे के अनुसार पिछले साल शुरू हुए यमन के गृह युद्ध में अब तक 17,000 लोग मारे गए हैं और 37,000 लड़ाई के दौरान घायल हुए हैं। WHO का कहना है कि यमन की आधे से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं या तो बंद हो गई हैं या आंशिक तौर पर चल रही हैं। इस युद्ध की वजह से दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक यमन की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है और डॉक्टरों का कहना है कि लोग भूख से मर रहे हैं। चीन ने हांगकांग की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करते हुए यहां के चुने हुए दो प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब जब मतदान के लिए 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है, दोनों उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए आखिरी जोर लगा रहे हैं। हालांकि 4 करोड़ से अधिक मतदाता पहले ही वोट डाल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईमेल मामले में हिलेरी क्लिंटन को FBI द्वारा क्लीन चिट दिए जाने की आलोचना की है। उधर हिलेरी ने न्यू हैम्पशायर में बोलते हुए कहा,
मैं सारे ही अमरीकियों की राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ, उनकी जो मेरे लिए वोट दें और उनकी भी जो मुझे वोट ना दें, क्योंकि हमें इस देश को सुधारना है और इसके लिए हर एक को साथ लेकर चलने की जरूरत है। हमें याद रखना होगा कि बिना नफरत पाले कैसे असहमत हुआ जाता है और आप जानते हैं राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल एक व्यक्ति को ये समझना होगा कि हमें अपने देश के लिए एक दूसरे के प्रति अपने से अलग लोगों के प्रति प्यार और उदारता बरतने की जरूरत है।
हिलेरी क्लिंटन के शब्द। आइए सीधे चलते हैं अमरीका बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश बताइए क्या गट फीलिंग है, फोटो फिनिश या किसी का पल्ला भारी?
रेहान साहब ये कहना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अधिकतर पोल्स जो है किसी में हिलरी क्लिंटन 2 पॉइंट से आगे चल रही है, किसी में 3 पॉइंट से। सिर्फ एक पोल है जिसमें कहा जा रहा है, जो एलए टाइम्स का पोल है जिसमें कि ट्रंप आगे चल रहे हैं, और ये तो तय अभी लग रहा है फिलहाल जो पोल्स को देखते हुए कि ये फोटो फिनिश वाली नौबत हो सकती है। लेकिन कागज पर जब आप समीकरण देखने लगते हैं तो कई बार लगता है कि हिलरी क्लिंटन बड़े फासले से हरा सकती हैं, लेकिन जो पिछले दिनों में और खासतौर से 1.5 हफ्ते की जो गतिविधियां हुई हैं ईमेल्स को लेकर, FBI के जो बयान कभी अगेंस्ट में कभी प्रो में जो आए हैं, उसके बाद जमीनी हालात क्या रहेंगे ये कहना फिलहाल मुश्किल लग रहा है कि, लेकिन जो पलड़ा है फिलहाल वो हिलरी क्लिंटन की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है।
ये जो ईमेल प्रकरण पर उनको क्लीन चिट मिली है, आपको लगता है उससे फायदा हो रहा है थोड़ा उनको?
देखिए हिलरी क्लिंटन का जो मोमेंटम था वो तीसरे डिबेट के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, उस पर एक तरह से एक ब्रेक लग गया था उस जब पहली बार FBI ने जब कहा कि वो दोबारा से ईमेल की जांच कर रहे हैं, और इसलिए भी क्योंकि कई राज्यों में अर्ली वोटिंग शुरू हो चुकी थी और खासतौर से फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना जो बेहद अहम है और ओहायो। अब जब FBI ने उन्हें क्लीन चिट दे दिए तब भी हिलरी क्लिंटन कैंपेन ईमेल्स की बात नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो एक विवादास्पद मामला है और उंगली बार बार हिलरी क्लिंटन की तरफ उठती है। ये जरूर है कि हिलरी क्लिंटन अब बचे हुए 24 घंटों में अपने पैगाम पर फोकस करेंगे कि वो क्या पॉलिसी ला रही है सामने, लेकिन अब किसी तरह ये जो खास तौर पर जानकार है वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी इसका कोई असर नजर आ जाए वोटर्स पर इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये जरूर है कि आज 5 रैलियां वो खुद कर रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप अलग 5 रैलियां कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उस मामले को बार बार ये कहकर ला रहे हैं कि इतनी जल्दी 6.5 लाख ईमेल्स FBI ने कैसे जांच कर लिए, और इसके पीछे वो धांधली के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं FBI पर दबाव डाला गया। जो FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी की तारीफों के पुल बांध रहे थे 2-3 दिनों पहले तक, आज उनसे खासे नाराज वो नजर आ रहे हैं और काफी उनकी आलोचना कर रहे हैं।
अंतिम क्षणों में कहां कहां ध्यान केंद्रित कर रहे हैं दोनों उम्मीदवार?
देखिए हिलरी क्लिंटन पेंसिल्वेनिया में है, न्यू हैम्पशायर में है, ओहायो में है, लेकिन देखने वाली चीज एक चीज है कि वो मिशिगन में भी है। मिशिगन एक तरह से डेमोक्रेट्स का गढ़ कहा जाता था और वहां मुकाबला कहा लग रहा है कि काफी कड़ा हो गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से वही बर्नी सैंडर्स वाले मैसेज लेकर आ रहे हैं कि व्यापार और ट्रेड ने मिशिगन को बर्बाद किया है और उसमें हिलरी क्लिंटन का हाथ रहा है। तो जो बड़े बड़े दिग्गज हैं डेमोक्रेट्स के आज वहां भी वो रैली कर रहे हैं। आज शाम में लेकिन फिलाडेल्फिया में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, बिल क्लिंटन, चेल्सी क्लिंटन और साथ में 2 जाने माने स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बोन जोवी वो भी होंगे वहां पर, और जो आखिरी रैली होगी वो रात के 12 बजे नॉर्थ कैरोलिना में हिलरी क्लिंटन करेंगी। ट्रंप आज फ्लोरिडा में है, नॉर्थ कैरोलिना में है, पेंसिल्वेनिया में है, न्यू हैम्पशायर में है, मिशिगन में है, यानी ये 5 राज्यों में जिनमें से कई जहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं अमरीकी चुनाव का फैसला हो सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश उपाध्याय आपका। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की भी परिस्थिति आ सकती है कि मुकाबला टाई पर समाप्त हो, यानी कोई भी पक्ष इलेक्टोरल कॉलेज के लिए जरूरी वोट न ले पाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैंने यही सवाल रखा BBC संवाददाता सुबैर अहमद के सामने।
देखिए इसको हाइपोथेटिकल भी कहना बहुत उचित नहीं होगा क्योंकि अब तक के जो रुझान मिले हैं, जो लोगों ने बातें की हैं और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बहुत कड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, ये ऊँट किसी भी करवट ऊँट बैठ सकता है, तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक तरह से टाई हो गया यानी बराबर बराबर हो गया तो उसमें दिक्कत आ सकती है। होता यह है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो डिसाइड करता है अमरीकी राष्ट्रपति कौन होगा। जो पॉपुलर वोट है उसमें अगर आप बढ़त भी ले लें और इलेक्टोरल कॉलेज में जो आपको वोट मिले हैं वो कम आ गए, तो आप नहीं बन सकते राष्ट्रपति, जैसा कि सन 2000 में हुआ था अल गोर और जॉर्ज बुश के दरमियान। तो अल गोर ने जॉर्ज बुश से 5 लाख वोट ज़्यादा हासिल किए थे, पॉपुलर वोट यानी आम जनता का वोट, लेकिन वो इलेक्टोरल कॉलेज में थोड़े से पीछे रह गए, इसलिए वो उनकी शिकस्त हुई। हालांकि उन्होंने चैलेंज भी किया लेकिन शिकस्त उनकी हुई और जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बन गए। तो अब अगर ऐसी स्थिति बनती है कि इलेक्टोरल कॉलेज के 538 वोट हैं उसमें 269 दोनों को मिल गई, इन्हें बराबर बराबर वोट मिले, तो मैजिकल नंबर जो 270 का है वो किसी को नहीं मिल पाया तो टाई हो गया। उस सूरत में जो 12वां संशोधन है अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, उसके अनुसार अमरीकी कांग्रेस इस बात का फैसला करेगी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन होंगे। अमरीकी कांग्रेस में 2 सदन हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो ये फैसला करेगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, और सेनेट का फैसला होगा कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा।
और दोनों सदनों में इस समय स्थिति क्या है दोनों पार्टियों की?
देखिए, इस वक्त तो रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है दोनों में, 247 जो सीटें हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को हासिल हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, और 100 सेनेट की सीटें होती हैं। हर राज्य के जो 50 राज्य हैं अमेरिका में उसके 2-2 सीटें होती हैं, तो 100 में से इस वक्त 54 उनके पास हैं। लेकिन 8 नवंबर को जो इलेक्शन होंगे उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के भी इलेक्शन होते हैं साथ साथ, और हर 2 साल पर ये इलेक्शन होते हैं, और सेनेट की 14 सीटों के भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो उस 9 नवंबर को ही हमें समझ में आएगा किस पार्टी की बढ़त किस सदन में बनी। फर्ज कीजिए कि अगर सेनेट में एक पार्टी जो है खो देती, मतलब रिपब्लिकन पार्टी अपनी अक्सरियत खो देती है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अपनी अक्सरियत बनाए रखती है, अपना बहुमत बनाए रखती है, तो एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन पैदा हो सकता है जहां राष्ट्रपति की रिपब्लिकन का हो सकता है और उपराष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी का भी हो सकता है।
बहुत ही जटिल अमरीकी चुनाव, इतना आसान नहीं है समझना। अच्छा, ये बताइए, इस तरह की स्थिति पहले कभी हुई है?
जी हाँ, इसकी एक ही मिसाल मिलती है, वो 1796 में, बिल्कुल जब अमरीका नया नया देश बना था, तो ये तीसरा चुनाव था और इसमें जो है वो ऐसे ही हो गया, टाई सा हो गया बिल्कुल। तो उस वक्त जॉन एडम्स राष्ट्रपति बने और उनके विपक्षी दल के यानी थॉमस जेफरसन उपराष्ट्रपति बने, और जब उसके अगली बार जब चौथा इलेक्शन हुआ यानी सन 1800 में, उस वक्त उलट हो गया मामला बिल्कुल। जब वो थॉमस जेफरसन उपराष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने शिकस्त दे दी जॉन एडम्स को, और उस वक्त भी ये दो अलग अपने अलग पक्ष में अलग अलग एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे और अलग पार्टी में भी थे।
ये थे बीबीसी संवाददाता सुबैर अहमद।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
भारत दौरे पर आई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने भारतीयों को वीजा देने में किसी भी तरह की राहत या रियायत देने से इनकार कर दिया है। टेरेसा ने कहा कि ब्रिटेन में वीजा देने का जो मौजूदा सिस्टम है वो पूरी तरह दुरुस्त है। विनीत खरे की रिपोर्ट।
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे का नई दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के भारत के साथ अहम व्यापारिक और कारोबारी समझौते होने हैं। भारत ब्रिटेन टेक समिट में बोलते हुए टेरेसा मे ने कहा कि भारत से आने वाले 10 में से 9 वीजा आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इस बारे में और सोच सकता है अगर वीजा पर निर्धारित समय से ज्यादा रह रहे भारतीय जल्द वापस आ जाएं।
We've also agreed to establish a strategic dialogue on home affairs issues.
टेरेसा मे कह रही थी, हमने आंतरिक मामलों जैसे वीजा, सुनियोजित अपराध जैसे मामलों पर कूटनीतिक बातचीत शुरू करने के लिए हामी भर दी है। ब्रिटेन भारतीयों को दिए जाने वाले वीजा की संख्या बढ़ा सकता है अगर उन भारतीयों की वापसी की संख्या जिन्हें ब्रिटेन में रहने का अधिकार नहीं है उसमें तेजी आए। ये थी टेरेसा मे। माना जा रहा है कि ब्रिटेन की सरकार अमीर भारतीय व्यापारियों के लिए ब्रिटेन आना आसान बनाएगी। जिन लोगों के पास अथाह संपत्ति है उन्हें और उनके परिवारों को वीजा देना आसान बनाया जाएगा। हजारों भारतीय जिनके पास वर्क वीजा है वो रजिस्टर्ड ट्रैवलर्स स्कीम में हिस्सा ले सकेंगे, जिसका मतलब है कि वो ब्रिटेन आसानी से आ पाएंगे। जून 2010 में जहां 68,000 भारतीयों को ब्रिटेन में पढ़ने के लिए वीजा मिले, 5 साल बाद ये संख्या गिरकर आधी रह गई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा उठाया।
आई कन्वेड अवर डीप कंसर्न टू प्राइम मिनिस्टर मे रिगार्डिंग।
नरेंद्र मोदी कह रहे थे, मैंने प्रधानमंत्री मे के समक्ष सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मैंने उनसे कहा कि जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये थे नरेंद्र मोदी। टेरेसा मे की भारत की 3 दिवसीय यात्रा में उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव लियम फॉक्स और व्यापार मंत्री ग्रेग हैंड्स के अलावा ब्रिटेन की 33 कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा में जिन सौदों पर मुहर लगने की उम्मीद है उनमें ब्रिटेन की पेंड्रोल ग्रुप और भारत की राही ग्रुप के बीच रेल योजनाओं के लिए उत्पादन संयंत्र, चेन्नई में लाइका हेल्थ यूके का एक इमेजिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर और कोची में ब्रिटेन की क्लाउड पैड कंपनी का हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए निवेश शामिल है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
चीन ने हांगकांग की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करते हुए यहां के चुने हुए 2 प्रतिनिधियों के कार्यभार संभालने पर रोक लगा दी है। चीन ने यह कार्रवाई तब की जब इन दोनों प्रतिनिधियों ने शपथ ग्रहण के दौरान जानबूझकर शपथ के निर्धारित शब्दों को बदलकर चीन के प्रति निष्ठा रखने से इनकार कर दिया। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ रोहित जोशी।
हांगकांग की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सितंबर में चुनकर आए 2 सांसदों सिक्टस लेउंग और वाई चिंग ने उनके शपथ ग्रहण पर आपत्ति जताए जाने के चलते कई बार शपथ ग्रहण किया, लेकिन हर बार वे निर्धारित शब्दों को जानबूझकर अपने अनुसार बदलते रहे और चीन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर हस्तक्षेप करते हुए चीन ने इन दोनों प्रतिनिधियों के कार्यभार संभालने पर रोक लगा दी है। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि चीन ने हांगकांग के कानून की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो भी प्रतिनिधि सही तरीके से शपथ नहीं लेगा उसे कार्यभार नहीं संभालने दिया जाएगा। ये दोनों चुने गए सांसद 2014 में हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक ऑक्यूपाई सेंट्रल आंदोलन का नेतृत्व करने वाली यंग एक्सप्रेशन पार्टी की ओर से हैं, जो कि हांगकांग की चीन से आज़ादी की मांग करती रही है। चीन के इस फैसले के बाद हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव लेउंग चुन युंग ने कहा है कि वे इसे पूरी तरह से लागू करेंगे। उन्होंने कहा है कि इन दोनों सांसदों ने हांगकांग का अपमान किया है।
सिक्टस लेउंग और वाई चिंग के अलावा कुछ और ऐसे चुने गए सांसद हैं जिन्होंने जानबूझकर शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का उल्लंघन किया। यहां तक कि उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान देश और चीन के लोगों का अपमान किया। साथ ही उन्होंने हांगकांग की आज़ादी की भी वकालत की। इनके इस कदम ने हांगकांग और पूरे देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है।
हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव लेउंग चुंग यिंग के शब्द। उधर लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने चीन के इस हस्तक्षेप की आलोचना की है। उनके एक सदस्य एल्विन येउंग का कहना था कि इस मामले से निपटने के लिए हांगकांग की कानून व्यवस्था ही काफी है। इस मामले को देखने के लिए हांगकांग की न्याय व्यवस्था पर्याप्त है। बुनियादी कानूनों की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की ओर से की जा रही व्याख्या ने अदालत की कार्रवाई और साथ ही विधान परिषद दोनों को खारिज कर दिया है। लोकतंत्र समर्थक सांसद एल्विन येउंग के शब्द। चीन की इस दखलंदाजी पर हांगकांग में आम लोगों के बीच काफी रोष दिखाई दिया है। हालांकि कई लोग लोकतंत्र समर्थक इन सांसदों के इस कदम से सहमत तो नहीं है, लेकिन उन्हें चीन के हस्तक्षेप पर एतराज है। उनका कहना है कि इससे चीन हांगकांग में लोगों की अभिव्यक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अनदेखी कर रहा है। हांगकांग में रहने वाली कैथी चैन चीन के निर्णय पर एतराज जताते हुए कहती हैं,
मुझे लगता है कि इन सांसदों ने शपथ लेते हुए कानून का सम्मान नहीं किया है, लेकिन हांगकांग में हमारे पास अपने कानून हैं, इसलिए हम खुद से निर्णय कर सकते हैं कि वे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बन सकते हैं या नहीं।
हांगकांग की एक नागरिक कैथी चैन के शब्द। हांगकांग में पिछले कई हफ्तों से भारी सियासी उथल पुथल जारी है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार की रात कई जगहों से हाथापाई की भी खबरें हैं और कम से कम 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कहा जा रहा है कि 1997 के बाद से चीन का हांगकांग में यह सबसे आक्रामक हस्तक्षेप है।
चीन का हांगकांग की राजनीति में हस्तक्षेप।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादियों ने 4 महीने से जारी बंद के बारे में आखिरी निर्णय लेने के लिए लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यापारिक संगठनों से बातचीत की प्रक्रिया शुरू करती है। इस आंदोलन के दौरान जहां 100 से ज्यादा कश्मीरी सरकारी कार्रवाई में मारे गए और हजारों घायल हो गए, वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन इस सब के बावजूद भारत सरकार ने पाकिस्तान या अलगाववादियों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं किया है। इस परिस्थिति में घाटी में भारत विरोधी हड़ताल जारी है और अलगाववादियों पर दबाव पड़ रहा है कि वो आर्थिक और शिक्षा संबंधी गतिविधियों के हमेशा के लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकते। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
8 जुलाई की शाम दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में पुलिस ऑपरेशन में चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की 2 साथियों समेत मृत्यु के बाद कश्मीर में जो भारत विरोधी आंदोलन छिड़ा वो 4 महीने गुजर जाने के बाद भी जारी है। सरकारी कार्रवाइयों में अब तक 100 से अधिक लोग मारे गए और 15,000 घायलों में सैकड़ों ऐसे हैं जिनके चेहरों पर छर्रे लगे हैं। कई युवकों की आंखें प्रभावित हुई हैं। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सईद अली गिलानी, मीरवाज उमर फारूक और यासीन मलिक ने लगातार बंद के बारे में कोई निर्णय लेने के लिए सामाजिक वर्गों को कल बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार का दावा है कि अलगाववादियों पर अब लोगों का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन लोग क्या कहते हैं?
जरूरी नहीं है कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिले। मेरे हिसाब से इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन उतार चढ़ावों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए बनिस्बत के हम मायूस हो जाएं।
अब 4 महीने के बाद अवाम को हौसला देने की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 महीनों से कश्मीर काज फिर से उजागर हो गया है। मेरा यही मानना है कि ये बड़ा स्टेप है जो कि कायदी ने कल मीटिंग बुलाई है।
हिंदुस्तान ने अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हमारी मबनी पर हक जदोजहद को दबाने के लिए, वो उसमें शायद कामयाब हो गए, लेकिन तहरीकें कभी दबती नहीं है, ये वक्ती तौर कमजोर पड़ जाती है।
हम ये भी कह सकते हैं कि हम हड़ताल को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें ऑन द टेबल ही बात करनी होगी। मेरा मशवरा यह होगा कि अब 4 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को नॉर्मलसी की तरफ, यानी नॉर्मलसी बमाने हड़ताल न हो उसकी तरफ लेके जाया जाए।
कल होने वाली बातचीत के बारे में व्यापारी संगठनों का कहना है कि वो पहले ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन दे चुके हैं और हड़ताल के बारे में वो जो भी निर्णय लेंगे वो इन्हें कबूल होगा। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन खान:
अभी तक हमें कहीं पे भी नहीं लगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने अपने रवैये में कोई लचक पैदा की है। हमारा ये मौकफ है कि मसले कश्मीर पे बात होनी चाहिए। ट्रैक 2 में कुछ बातें हो रही हैं, हमें भी उसका इल्म है, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान कोई बात कहे और जो भी कल फैसला होगा इंशाल्लाह ताला हम हुर्रियत के फैसले के बराबर साथ हैं।
इस बीच घाटी में 4 महीनों से स्कूल बंद हैं और पर्यटन भी ठप है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि हड़ताल के कारण प्रतिदिन कम से कम 150 करोड़ रुपए का खसारा हो रहा है, जिसका मतलब है कि कश्मीर को अब तक 18,000 करोड़ रुपए का आर्थिक खसारा उठाना पड़ा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस समय में सरकार को भी 1200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। 2 ही वर्ष पहले भयानक बाढ़ के कारण कश्मीर के आर्थिक स्वास्थ्य को धचका लगा था। व्यापारियों का कहना है कि बाढ़ से 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि सरकार ये मान चुकी है कि 44,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बाढ़ में तबाह हो गई। अब सबकी नजरें लोगों के साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कल होने वाली बातचीत पर लगी हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं मोहनलाल शर्मा और सुमिरन प्रीत कौर।
आपकी राय। मैं हूं मोहनलाल शर्मा और मेरे साथ आज चिट्ठियों के भंडार के साथ सुमिरन प्रीत कौर मौजूद
हैं।
तो सुमिरन, चिट्ठियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं?
तारीफों से शुरू कर रहे हैं। पहली तारीफ आई है, ये लिखी है प्रदीप नेगी ने, जो लिखते हैं चमोली से, उत्तराखंड से।
ईमेल के थ्रू भेजा है
जी। और ये कहते हैं कि रेहान फजल की जो APJ अब्दुल कलाम पर विवेचना की गई थी वो उन्हें बेहद पसंद आई है, लेकिन प्रसारण को सुनने वक्त उन्हें बहुत दिक्कत हुई। तो एक ये है। वहीं इसी की तारीफ,
यानी कि जो रेहान फजल की जो पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब पर जो विवेचना थी उसी की और चिट्ठी भी है।
जी बिल्कुल। और अशीक हिरानी जी को भी गुजरात से पसंद आई है विवेचना। वहीं नीतीश कुमार यादव जिला भोजपुर से लिखते हैं कि वो शुक्रिया अदा नहीं करेंगे विवेचना के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आधे घंटे का समय इस टॉपिक के लिए बहुत कम था, तो वो ये शिकायत लिखते
हैं। और खासकर विवेचना जो है वो लगभग 13.5 मिनट की होती है, जिसमें कि 13 मिनट में किसी के बारे में बहुत कुछ कह देना, ये जो कला है वो रेहान फजल के पास है और वही इस काम को कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे तो लगता है कि जैसे ही विवेचना शुरू होती है तो हमारे जो श्रोता हैं, जो कार्यक्रम को सुन रहे होते हैं, वो चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। अगली चिट्ठियाँ क्या कह रही हैं?
अगली जो तारीफ है वो है अशोक भारत की मुजफ्फरपुर बिहार से, जो कहते हैं कि लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत पर सीटू तिवारी की जो रिपोर्ट थी काफी विविधतापूर्ण रही, रोचक एवं समृद्ध थी, अच्छी रिपोर्ट के लिए उन्हें बधाई। वहीं राजेश जोशी जी की भी उन्होंने तारीफ की जो मणि शंकर अय्यर के साथ उन्होंने साक्षात्कार किया
और इस बार हमने उसको संडे दिनभर में प्रसारित किया था।
जी बिल्कुल, और वो कहते हैं कि जहां राजेश जोशी एक पत्रकार थे और सवाल पे सवाल पूछते गए, वहीं दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर क्योंकि नेता है तो वो भी गोल मोल जवाब देते गए। और कुछ ऐसा ही कहना है अर्जुन दानचारण का जो बाड़मेर से है।
भाई देखिए, सवाल पूछना तो हमारा काम है और सवाल एक जब पत्रकार पूछता है तो कड़े सवाल पूछता है। अब ये तो नेताओं की बात है कि वो सवालों का जवाब कैसे देते हैं और गोल गोल जवाब देकर कैसे उससे निकल लेते हैं।
जी, और अब जो मैं चिट्ठी पढ़ूंगी शायद मुस्कुराहट आ जाए आपके चेहरे पर। ये लिखी है राहुल कुमार ने भागलपुर बिहार से, जो कहते हैं कि बहुत दिनों से इंडिया बोल नहीं सुनता था क्योंकि इस प्रोग्राम की क्वालिटी में गिरावट आ चुकी थी, लेकिन शनिवार को मोहनलाल शर्मा ने मेरी ये शिकायत दूर कर दी।
वाकई जो है वो मुस्कुराहट आ गई
ना। भाजपा के नेता से बेहद दमदार सवाल पूछे गए और वहीं शत्रुघ्न सिंह चौहान ने इंडिया बोल के लिए आपको और सुशीला सिंह को 100 में से 100 अंक दिए।
भाई वाह, क्या बात है। देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर हम अपने बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा करते हैं तो कोशिश ये होती है कि हम विषय पर टिके रहें, क्योंकि आधे घंटे के कार्यक्रम में उस पूरे विषय को समझना और समेटना और खासकर श्रोताओं को भी जगह देना काफ़ी चुनौती भरा काम होता है। आप लोग हमें टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करते हैं और तमाम हमारे श्रोताओं की ये भी शिकायत होती है कि फ़ोन नहीं लग पाते, लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहें तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।
जी, और अगली तारीफ आई है एहसान असगर की बुल्दाना महाराष्ट्र से, जो लिखते हैं कि दिव्या आर्या की मुजफ्फरनगर से की गई रिपोर्ट ने तो सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये हो क्या रहा है। बहुत अच्छे सवाल भी उन्होंने पूछे, और वही कहना है कमल जोशी का अल्मोड़ा से, जो कहते हैं कि आजकल बेटी बचाओ का नारा जरूर लोकप्रिय है लेकिन कितने लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं, और कहते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर जैसी तकनीक का भारत में महिलाओं के हित में कम और उनके विरुद्ध दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है।
मुझे याद है कि दिव्या आर्य की ये जो विशेष रिपोर्ट थी ये मैंने ही अपने कार्यक्रम में प्रसारित की थी, और इस रिपोर्ट की जो विषय वस्तु थी वो वाकई बेहद प्रासंगिक, दिलों को छू लेने वाली और एक सवाल जरूर समाज पर छोड़ने वाली थी। आपको दिव्या आर्य का ये प्रयास पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बीबीसी की एक टीम के रूप में हमारी कोशिश यही होती है कि समाज से जुड़े मुद्दों को छुएं और उठाएं और उसकी पड़ताल करें और एक सही जानकारी, समग्र तस्वीर हम आप तक लेके आए।
जी, और एक और विवेचना की चिट्ठी आई है दरभंगा बिहार से। बिल्कुल, अशोक कुमार ठाकुर ने वक्त निकाला है और चिट्ठी लिखी है, और उन्हें बहुत पसंद आई एक विवेचना जो बुदुनी आदिवासी
बुदुनी जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका विवाह पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, उनके साथ हुआ था, उनके बाद क्या दशा और दिशा है उस रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। तो उनको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा। आज शिकायतें नहीं ली आपने?
नहीं, ज्यादा शिकायतें आई नहीं है। अगर एक शिकायत आई भी है वो तो इसलिए आई है कि सुनने में दिक्कत होती है, सुबह का प्रसारण सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है।
जी, तकनीकी दिक्कतें हैं और तमाम श्रोता भी हमसे कहते रहते हैं कि उन्हें प्रसारण सुनने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारी फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं वो इस बार फिर से बदली हुई हैं, और कृपया इन फ्रिक्वेंसीज पर, जो कि कार्यक्रम के दौरान हम बार बार प्रसारित करते हैं, इन पर अपना रेडियो लगाइए तो हो सकता है कि आपको आपका प्रसारण जो है वो साफ सुनाई दे। तो आज बस कार्यक्रम में इतना ही, तो अपने श्रोताओं से विदा ले लें। पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। ईमेल मामले में एफबीआई के हिलरी क्लिंटन को क्लीन चिट देने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया है कि चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के पक्ष में धांधली की जा रही है। भारत की यात्रा पर आई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने ऐलान किया है कि ब्रिटेन में तय समय के बाद अवैध तौर पर रह रहे भारतीय वापस लौटे, तभी ब्रिटेन भारतीयों को वीजा देने में लचीला रुख अपनाएगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।